नमस्कार, आज हम एक बहुत खास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं।
नमस्कार।
पुस्तक का नाम है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, जिसे वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने लिखा है।
जी हाँ।
और हम आज इसके एक अध्याय नारी की वरिष्ठता स्वीकारें, इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही कह सकते हैं आधारभूत अध्याय है इस पुस्तक का।
और इसकी शुरुआत ही एक बड़े एक मजबूत विचार से होती है, ये कि नर और नारी का जो प्राकृतिक युग्म है उसमें वरिष्ठता, एक तरह से प्रमुखता नारी की है।
जी,
ये अपने आप में एक कह सकते हैं बोल्ड स्टेटमेंट है, जरा इस पे और बताएं।
हाँ बिल्कुल, वंदनीय माता जी का ये जो दावा है ये मुख्य रूप से प्रकृति ने जो भूमिका दी है उस पर आधारित है।
अच्छा।
वो लिखती है कि भाई देखो, सारी मनुष्य जाति को जन्म कौन देता है? नारी ही देती है अपने उदर में धारण करके। तो ये एक ऐसी मौलिक भूमिका है जो सिर्फ उसी के पास है, और इसी आधार पर वो नारी की वरिष्ठता की बात करती हैं।
सही है। और सिर्फ जन्म देना ही नहीं बल्कि जो पालन पोषण का वर्णन है वो भी बड़ा भावनात्मक है।
हाँ बहुत।
जैसे वो कहती हैं कि अपना लाल रक्त सफेद दूध में बदलकर संतान को पिलाती है।
हाँ।
और इसमें कोई एहसान नहीं बल्कि सिर्फ स्नेह और वात्सल्य। ये विचार तो बड़ा गहरा है।
निश्चित रूप से पुस्तक में इसे ऐसे समझाया है जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मांस का पिंड है और माँ उसे अपने समर्पण और स्नेह के जल से सींच कर एक बड़ा फल देने वाला पेड़ बना देती है।
वाह।
और वो पेड़ फिर समाज को शोभा और समृद्धि देता है। तो वंदनीय माता जी मानती हैं कि नारी की इन्हीं भावनाओं और गतिविधियों की वजह से उसे देवी का स्थान दिया गया है।
अच्छा, वंदनीय माता जी नारी के अलग अलग रूपों की भी बात करती है ना, जिनसे ये वरिष्ठता और महत्व पता चलता है, जैसे माँ के रूप में।
हाँ बिल्कुल, माँ के रूप में तो उन्हें जीवनदायिनी कहा ही गया है। पुस्तक ये कहती है कि पिता का तो बस एक छोटा सा लगभग नगण्य सांश होता है, उसे नारी अपनी आत्मसत्ता से मतलब अपनी जीवन ऊर्जा अपने सार तत्व से सींच कर एक पूरा योग्य नागरिक बना देती है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है।
सही बात है। अच्छा, माँ के अलावा पुत्री के रूप का भी जिक्र है शायद, पिता के लिए बेटी का क्या महत्व बताया है।
हाँ, पुत्री के रूप का वर्णन भी बहुत सुंदर है। वंदनीय माता जी लिखती हैं कि बेटी पिता के मन में नारी जाति के लिए एक पवित्रता, एक कोमलता जगाती है।
अच्छा, कैसे?
जैसे गंगा की निर्मलता होती है ना, वैसे ही बेटी पिता के मन के मैल को धोकर वहां मृदुलता और ममता जगाती है। एक नन्नी गुड़िया की तरह वो पिता की गोद में खेलती है और उसके हृदय को कोमल बनाती है।
ये एक अलग नजरिया है। माँ और बेटी हो गए, फिर बहन के रिश्ते में नारी का क्या स्थान है?
बहन के रूप में भी उनकी ममता, उनका अपनापन, सरलता और सहृदयता, इनको अद्वितीय कहा गया है।
अद्वितीय।
ये वंदनीय माता जी का मानना है कि भाई के लिए बहन के मन में जो एक निश्चल प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, वो प्रेम की पवित्रता का जीता जागता सबूत है। और ये चीज आज भी हमें देखने को मिलती है।
हाँ, ये बात तो है, भाई बहन का रिश्ता खास होता है। अच्छा, और फिर आता है पत्नी का रूप जो गृहस्थ जीवन का आधार है, उसके बारे में क्या कहा गया है?
पत्नी के रूप का वर्णन तो और भी गहन है। पुस्तक कहती है कि वो स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा मनमोहक है।
अच्छा।
हाँ, और पुरुष के लिए वो दाहिनी भुजा जैसी है, मतलब सबसे बड़ी सहायक, शरीर की छाया की तरह हमेशा साथ निभाने वाली और हृदय की धड़कन की तरह जीवन देने वाली। ये बहुत ही सशक्त उपमाएं हैं।
वाकई बहुत सशक्त हैं। और शायद इसी बात पर जोर देने के लिए शिव और सती का उदाहरण भी दिया गया है ना।
जी हाँ बिल्कुल, सती जब देह त्याग देती हैं तो शिव जैसे मतलब बिल्कुल विक्षिप्त होकर भटकते हैं।
हाँ, वो कथा तो प्रसिद्ध है।
जी, तो उस कथानक का जिक्र करके वंदनीय माता जी यही दिखाना चाहती हैं कि देखो, नारी के बिना पुरुष का जीवन कितना अधूरा, कितना दिशाहीन हो सकता है। ये उसके महत्व को स्थापित करने का एक आप कह सकते हैं पौराणिक उदाहरण है।
समझ गया। और घर परिवार के बारे में भी एक बात कही गई है कि गृह का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है।
बिल्कुल सही, वंदनीय माता जी कहती हैं कि गृह असल में गृहिणी से बनता है।
अच्छा, गृह से गृहिणी नहीं, गृहिणी से गृह।
जी, यही उनका विचार है कि घर वाली यानी गृह लक्ष्मी उसी के परिश्रम से, उसी के त्याग और सृजनशीलता से एक नया परिवार बनता है, वंश आगे बढ़ता है। तो इस तरह से देखें तो वो समाज की नींव रखने वाली है।
ठीक है, तो अगर हम इस पूरे अध्याय का एक सार निकालना चाहें तो क्या कह सकते हैं, मतलब निचोड़ क्या है?
देखिए, संक्षेप में कहें तो ये अध्याय नारी की वरिष्ठता को स्थापित करने का एक प्रयास है, और इसका आधार क्या है?
हाँ, आधार क्या है?
आधार है उसकी सृजन की क्षमता, यानी जन्म देना, फिर संतान को बिना किसी स्वार्थ के पालना पोसना, और परिवार में उसकी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, माँ, बेटी, बहन, पत्नी। वंदनीय माता जी इन सब भूमिकाओं को बहुत मौलिक और अनिवार्य मानती हैं। उनके बिना समाज चल ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अध्याय नारी की भूमिका और समाज में उसके योगदान पर एक खास, कह सकते हैं, पारंपरिक और आध्यात्मिक नजरिया पेश करता है।
जी बिल्कुल,
जो उसे परिवार और समाज की धुरी केंद्र बिंदु मानता है।
हाँ, और यहीं पर एक विचार करने लायक बात सामने आती है।
क्या?
कि वंदनीय माता जी नारी के इन सभी रूपों और गुणों को एकदम प्राकृतिक, स्वाभाविक और लगभग दैवीय मानती है।
हाँ, ये तो है।
तो आज का जो समय है, जहाँ हम लैंगिक भूमिकाओं पर, सामाजिक ढांचों पर इतनी नई तरह से सोच विचार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं,
सही बात है,
तो ऐसे में ये जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, इस पर सोचना हमें आज क्या सिखा सकता है, हमारी आज की समझ को ये कैसे प्रभावित कर सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं।
बिल्कुल, एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न छोड़ा है आपने, और इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।